ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 13 अक्टूबर 2019 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ, नीति वचन। धाम की बात में जीवन मिलता है और उसके पाथ में मृत्यु का पता भी नहीं। उत्तरदायी अध्ययन, भजन सैनता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से यर्मिया। जो वचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधाम क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा। लूका। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जकई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धानी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गोलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु वहां पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें ठीक किया। और गलील और दिकापुलिस और यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। योहन्ना। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु ही है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतात के कारण उसे खींच न सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि ये प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ की दूरी पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हया ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछलियां भी। ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। भजन सैनता। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सख्ती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धार्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बालहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूँगा। प्रकाशित फाकी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समंदर भी ना रहा था। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलम को आसमान पर से ही परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए संघार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सच्चाई आध्यात्मिकता की शांत मजबूत धाराएं, जिनमें से अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता और आत्मविनाश हैं। मानव अनुभव को गहरा करना चाहिए, जब तक के भावतिक अस्तित्व की मनियाताओं को एक गंजेपन के रूप में नहीं देखा जाता, और पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वरी आत्मा के वैज्ञानिक प्रदर्शन और परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्ध इंसान को हमेशा के लिए जगह देते हैं। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और उन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम उन्हें भवे और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। नहेश्वर था अच्छाई, दया, न्याय, स्वस्थ, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे, और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। शरीर विज्ञान और स्वच्छता के पालन के माध्यम से स्वस्थ को ठीक करने में असफल, निराश व्यक्ति अक्सर इन्हें छोड़ देता है और अपने चाम में और केवल अंतिम उपाय के रूप में भगवान की ओर मुड़ता है। परमात्मा के मन में अमान्य विश्वास दवाइयों, हवा और व्यायाम की तुलना में कम है। ये उसने पहले मन का सहारा लिया होगा। शक्ति का संतुलन अधिकांश चिकित्सा प्रणालियों द्वारा पदार्थ के साथ होने के लिए माना जाता है, लेकिन जब मन अंतिम बार पाप, बीमारी और मृत्यु पर अपनी महारत हासिल करता है तो मनुष्य सामान जैसा पूर्ण और अमर हो जाता है। मनुष्य का व्यक्तित्व कम मूर्त नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है और क्योंकि उसका जीवन पदार्थ की दया पर नहीं है। उनकी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की समझ मनुष्य को सच्चाई में अधिक वास्तविक, अधिक दुर्जी बनाती है और उसे पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हमारे स्वामी और प्रभु ने कब्र से पुनर्उठाने के बाद अपने शिष्यों को स्वयं को प्रस्तुत किया, जैसा कि स्वयं यीशु ने कलवरी की त्रासदी से पहले किया था। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोषन से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए कारण सही ढंग से निर्देशित शारीरिक समझ की त्रुटियों को ठीक करने का कार्य करता है। लेकिन पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक प्रतीत होगी, जैसे सोते हुए सपनों के अनुभव वास्तविक लगते हैं। जब तक कि मनुष्य की शाश्वत सिद्धभाव का विज्ञान विज्ञान की अखंड वास्तविकता के साथ उनके भ्रम को नहीं तोड़ता। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:51, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। ये कठान आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अस्तित्व की सभी घटनाएं शामिल हैं। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। नश्वर मन को त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए और अमर आदर्श मर्दानगी मसीह आदर्श दिखाई देगा। विश्वास को अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। बीमारी और मृत्यु में विश्वास निश्चित रूप से पाप में विश्वास के रूप में जीवन और स्वास्थ्य की सही भावना को बंद करने के लिए जाता है। ईश्वरी विज्ञान में भावतिक मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति से बंद कर दिया जाता है। 5 शारीरिक इंद्रियां आत्मा का संज्ञान नहीं ले सकती हैं, वो उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकती हैं और स्वप्न भूमि में निवास करना चाहिए जब तक कि नश्वर उस भावतिक जीवन को समझने के लिए नहीं पहुंचता, जब तक कि उसके पास सभी पाप, बीमारी और मृत्यु के साथ एक भ्रम है जिसके खिलाफ ईश्वरी विज्ञान निवास की लड़ाई में लगा हुआ है। अस्तित्व की महानताओं को कभी भी मिथ्यात्व से बाहर नहीं रखा जा सकता। महान नमूने की तरह मरहम लगाने वाले को बीमारी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों के झूठे सबूतों को साबित करने और मृत्यु डर और बीमारी पर अपने दावों को साबित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक ही सिद्धांत पाप और बीमारी दोनों को ठीक करता है। जब दिव्य विज्ञान एक कार्तिक मन में विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास पाप में और उपचार के भावतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। प्रिय पाठक, मुझे आशा है कि मैं आपके दिव्य अधिकारों, आपके स्वर्ग सिद्धभाव की समझ में अग्रणी हूँ। जैसा कि आप बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कोई कारण नहीं है गलती से भावतिक अर्थ जो शक्ति नहीं है आपको बीमार या पापी बनाने में सक्षम है, और मुझे आशा है कि आप इस झूठे अर्थ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तथाकथित भावतिक अर्थों के मिथ्यात्व को जानने के बाद आप पाप, बीमारी या मृत्यु में विश्वास को दूर करने के लिए अपने विशेषाधिकारी का दावा कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:1 में हमने पढ़ा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समंदर भी न रहा। पुनरुत्थानवादी ने मृत्यु नामक मानव अनुभव में अभी तक संक्रामणकालीन चरण को पार नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। सेंट जॉन के प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की शत्रुता गायब हो गई थी और इस झूठे अर्थ के स्थान पर आध्यात्मिक भावना थी, व्यक्ति पार्क स्थिति, जिसके द्वारा वो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देख सकता था, जिसमें आध्यात्मिक विचार और वास्तविकता की चेतना शामिल है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए शास्त्र सामित अधिकार है कि इस अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में पुरुषों के लिए ये संभव है, और ये कि हम यहाँ और अब मृत्यु, दुख और पीड़ा के निवारण के लिए सुचेत हो सकते हैं। ये वास्तव में पूर्ण क्रिश्चियन साइंस का पूर्वज है। प्रिय पीड़ित, दिल थाम लो। इस वास्तविकता के लिए निश्चित रूप से कुछ समय में ये और किसी तरह दिखाई देगा। अधिक दर्द नहीं होगा और सभी आंसू मिटा दिए जाएंगे। अब आप इसे पढ़ते हैं तो यीशु के इन शब्दों को याद रखें, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये आध्यात्मिक चेतना इसलिए एक वर्तमान संभावना है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है, प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।